शांति। आज परमात्मा के बहुत सुंदर महावाक्य चले हैं कि देवताओं में एक विशेष गुण जो कशिश करता है वो हर्षित मुक्ता के साथ रमणीकता भी है, इसीलिए वो सबको आकर्षित करते हैं। और अभी जो हमारा सेशन लेने वाले हमारे भाई साहब गिरीश भाई, जो 25 सालों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी क्लासेस में हमने सदा ही ये देखा कि किस तरह वो रमणीकता से जीवन के उन सिद्धांतों को दिखा देते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं और सहजता से हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए परमात्मा का एक रूप नटराज भी रखा गया है। कहते हैं मीरा ने नृत्य करके ईश्वर को रिझाया, पर सत्य ये है कि मीरा ने ईश्वर को पाया तो वो नृत्य करना सीख गई। तो बहुत सुंदर विषय को लेकर, सब विषयों का समावेश करके हमारे बीच हमारे गिरीश भाई आए हैं। हम उनका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, जिन्होंने इसरो में भी अपनी सेवाएं दी हैं, नेवी में भी अपनी सेवाएं दी हैं, और किस तरह उन्होंने के जीवन में भी परिवर्तन किया है। आज एक परिवर्तन का अंकुरण यहाँ भी।
ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। ये प्यार है आपका, इतना हल्का फुल्का ढीला ढाला, बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। क्या बात है, मांगना पड़ता है प्यार, ऐसे तो नहीं मिलता जी। ठीक है ना, भारत को गैस और ऑयल मांगना पड़ रहा है जी दूसरे देशों से, ऐसे भी प्यार भी मांगना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। एक दूसरे को देखिए, मुस्कुराइए, ओम शांति कहिए। क्या बात है, हमारी माताएं इतनी खुश हो रही हैं, पता है क्यों? क्योंकि बाजू में पति नहीं बैठे हैं, नहीं तो गुम हो जाता था जी हंसी जी। अकेले है तो खुश है, ठीक है। ये भाई लोग उससे ज्यादा प्रसन्न चित्त, क्योंकि पत्नी नहीं बैठी है, वो तो गायब हो जाता है हमारी खुशी। ठीक है, चलिए मुस्कुरा रहे हैं सभी, बहुत अच्छा, बहुत उमंग उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। मैं चाहूंगा कि चाइना वाले भाई भारत में जुड़ेंगे तो अच्छा है। ठीक है, विदेश में बैठ के भारत का क्लास का उमंग उत्साह ले रहे हैं। ठीक है, हाँ आप भी आ जाएं, नेपाल वाले भी भारत में जुड़े, अफगानिस्तान वाली माताएं भारत में आइए, नजदीक आइए, हाँ आगे आइए आगे आइए। बर्मा वाले और बांग्लादेश वाले भाई भी जुड़े भारत के साथ। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके स्थान को चेंज किया, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? अच्छा लगा, ये देखो जी, किसी को बुरा लगे किसी को मज़ा भी आए, ये अच्छा है जी। ठीक ठीक है, चलिए आज का जो विषय मुझे दिया गया था वो था मास्टरिंग द माइंड, मन के को मास्टर करना। आप लोगों ने दीदी का एक क्लास भी सुना होगा गीता के ऊपर, था ना गीता का। उसमें दीदी ने तो बहुत सारी बातें स्पष्ट बताई होंगी, मैं एक दो बातें आपको बता देता हूँ। गीता में 700 श्लोक है। मेरी आवाज़ ठीक है? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गला थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन समझ में आ रहा है आपको? 700 श्लोक्स में भगवान वाच 574 श्लोक है, 574 भगवान वाच है, बाकी तो संजय वाच है, अर्जुन वाच है, धृतराष्ट्र वाच है। ठीक है, भगवान के महावाक्य कितने हैं? 574। ठीक, 574 श्लोक में एक भी श्लोक में भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा दुर्योधन तुम्हारा दुश्मन है। आप आज जाके थोड़ा सा रिफर कर लेना, एआई को ही पूछ लेना, चैट जीपीटी में ही पूछ लेना कि भाई गीता के 574 श्लोक में अर्जुन को इतना उपदेश दिया, इतना भर भर के ज्ञान दिया, 18 अध्याय भर के ज्ञान दिया, और क्या कहा, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। और तुम्हारा दुश्मन, एक श्लोक में नहीं कहा दुशासन है, शकुनी है, कौरव पक्ष है, शब्द नहीं है, और फुल चैप्टर है और 18 अध्याय, हर अध्याय का नाम योग शास्त्र, योग शास्त्र, योग शास्त्र, युद्ध शास्त्र, युद्ध शास्त्र, युद्ध शास्त्र। आपने कहीं भी गीता का फोटो देखा होगा ना, तो कृष्ण बैठे हैं, अर्जुन पीछे खड़ा है, पीछे सैनिक हैं, युद्ध का मैदान है, युद्ध डिपिक्ट करते हैं। गिनती के कम से कम 15 से 20 श्लोक ये जिसमें युद्ध शब्द, और आपको मैं इतने सारे श्लोक दिखाऊंगा जहां योग, योग हर चैप्टर का नाम, सांख्य योग, ज्ञान विज्ञान योग, योग 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 योग। और यहां पे परमात्मा हमको बार बार कहता है, बच्चे योग करो, योग करो, योग करो। और पता है अर्जुन को कहा, तुम्हारा दुश्मन कौन है? दो मुख्य दुश्मन, एक कहा काम विकार, दूसरा क्रोध। फिर तो और भी एक्सप्लेनेशन है, पूरा चैप्टर ही है उस पे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब आपसे पूछूं, प्रश्न पूछूं? हाँ या ना कहिए। हाँ तो सिर हिलाइए, क्योंकि मैंने देखा है भारत के लोग क्लास में बहुत अच्छी तरह आंख खोल के भी सोते हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा पूछूं, तुम चालू रखो जी, डिस्टर्ब नहीं करो हमको, ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। पूरा महाभारत का अध्ययन करिए, आपने देखा भी होगा महाभारत का सीरियल, टीवी में आता था, बहुत सारे उसके एपिसोड्स होते थे। 5 पांडव बिचारे थे, अच्छे थे, बचपन से ही उन पर बहुत अत्याचार, उनका लक्षाग्रह को जला दिया, उनको चौसर के खेल में हरा करके उनको 14 साल वन में भेज दिया, क्या क्या उनके साथ अन्याय किया। आपको कहीं से लगता है कि अर्जुन कामी था, क्रोधी था, अहंकारी था? कमाल है जी, जिसमें ये अवगुणी नहीं है उसको ही सुना रहा है तुम काम क्रोध से मुक्त बनो। आपका बच्चा गणित में हर साल 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100 मिलता है, उसको मम्मी पापा कहेंगे गणित पढ़, गणित पढ़, गणित पढ़, ऐसे बोलोगे क्या? वो तो जिस सब्जेक्ट में कमजोर होगा उसके बारे में बोलेंगे, गणित तो तुम्हारा बहुत अच्छा बेटा उसको मत पढ़, साइंस पढ़ो जी, साइंस में तुमको कम मत। अब आप पूरा रामायण का अध्ययन कर लीजिए, अर्जुन के कैरेक्टर को देख लीजिए, वो तो कितना अच्छा था। हाँ, मैं देख रहा हूं कि कौन लोग जागृत है, रामायण कहां से आ गया बीच में। तो महाभारत पढ़ लीजिए, देखा उसमें कहां बेचारा अर्जुन वो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारा कुछ नहीं था। तो कौन है अर्जुन, कौन है कृष्ण, कौन किसको ज्ञान दे रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसमें भी विशेष, अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोगों को गुस्सा आता है? भाइयों को बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कितने खुशी से बोल रहे हैं। और भाई साहब कह रहे हैं मैं करता नहीं हूं, आ जाता है। कहां से आता है? पेट के भीतरी हिस्से से, परिस्थितियों से। अच्छा जी। क्रोध कहां पर आता है? घुटने में आता है क्या? पेट में? मन में आता है। तो ये जो मन है ना, इसको मास्टरी करना पड़ेगा। दुख कहां आता है? मन में। डर कहां होता है? मन में। तो अगर मन को जीत लिया, और गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान ने कहा मन मना भव मध्याजी भव, मन मेरे में लगाओ पार्थ, छोड़ो सब चीज, फिर देखो तुम जीतोगे 100%, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। जस्ट फोकस योर माइंड। और जब हम फोकस के बारे में बात करते हैं तो मन ही फिर थोड़ा चंचल है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। और आजकल तो फिर हमारे पास मोबाइल फोन भी है, वो तो और भी हमको मन को क्या कर रहा है, भटकाव में लेकर जा रहा है। रिसर्च किया गया और पता चला, आप लोगों ने एक्वेरियम देखा है जहां मछलियां होती हैं अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे, उसमें एक फिश होता है गोल्ड फिश, इतना सही होता है, गोल्डन कलर का था, येलो गोल्डन कलर का, बहुत चंचल फिश है, ऐसे 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 स्थिर नहीं रहता है। उसकी स्थिरता 7 सेकेंड है, अगर उसको स्थिर रहना है ना तो 1, 2, 3, 4, 7 सेकेंड्स। कोविड के बाद मनुष्य का कंसंट्रेशन लेवल की स्थिरता को चेक किया गया, जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट में मोबाइल में हम बैठते हैं, तो पता चला मनुष्य का कंसंट्रेशन की जो लिमिट है 3 से लेकर 5 सेकेंड, जबकि मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, वो गोल्डफिश नहीं है। और इसीलिए शायद आपको ये हमारी बहुत अच्छी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दीदियों ने अपने अपने शहरों से आप सबको बोला, आओ देखो माउंट आबू में स्वयं भगवान किस प्रकार से एक परिवर्तन का कार्य कर रहा है। बाहर का परिवर्तन नहीं, अंदर का परिवर्तन। चलो आपसे प्रश्न पूछता हूं, ठीक है, पूछूं, जवाब देंगे? हाँ, मुझे एक जवाब चाहिए, सही और गलत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत उत्तर देंगे तो भी चलेगा, मुझे पता तो चलेगा आप लोग चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। मैं उस कॉलेज का टीचर रहा हूँ, जब तक मेरे बच्चे हाँ या ना ऐसे नहीं करते थे, मुझे समझ में ही नहीं आता था इनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, जवाब देना है, सिर हिलाना है, हाँ हाँ करना है। और एक और थोड़ा सा निवेदन है, थोड़ा मुस्कुरा करके बैठिए, आपको देख के मुझे टेंशन हो रहा है, ठीक है ना, आपको देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में आप खड़े हो और गोली चलने वाली है, कौन सा, आपको युद्ध तो नहीं करना है जी, रिलैक्स होकर बैठिए, मतलब सोना नहीं है लेकिन मुस्कुराइए, ठीक है। देखिए एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं या नहीं, और अगर पता चले बाजू वाला नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो उसको ऐसे करना, हेलो हेलो मुस्कुराओ भैया, मुस्कुराना बहुत चेहरे की मुस्कुराहट ये दर्शाता है, अच्छा गोविंद भाई आए, वाह क्या बात है, चेहरे की मुस्कुराहट ये दर्शाता है कि आपका चेतन मन रिलैक्स्ड है, कंफर्टेबल है, पीसफुल है, ईज है, खुश है। मन में अगर यहां बैठ के भी किसी बात का टेंशन हो जाएगा ना तो बाकी सब लोग हंस रहे हैं और आपकी हंसी कैसे पता चला आपको, आप लोग बड़े अनुभवी हैं जी, दुख की बातों में सब अनुभव, गायब तुरंत गायब। चलो ठीक है, बात पूछूं, आपके घर की सफाई दिन में कितने बार होती है? उड़ीसा में लगता है भाई लोग करते हैं घर की सफाई, जवाब भाई लोग दे रहे हैं जी, इतने उमंग, 2 बार 3 बार, माताएं तो शांत बैठी थी, भाई जवाब दे रहे 2 बार। क्या बात है, माताओं को इतना बुरा लगा, उनको क्यों बोल रहे करते हैं, हम लोग करते हैं और आप उनको क्रेडिट दे रहे हो, ये भी अच्छा है। तो माताएं फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं देते, पूछा दिया था, सॉरी, लेकिन इनका थोड़ा बुलंद आवाज था, ठीक है ना, पावरफुल था, मैं सुनने में गलती किया। पता है एक बार एक माताजी ने कहा, मैंने कहा माताएं आप जवाब क्यों नहीं देती हैं, तो माताजी ने कहा जो करता है वो बोलता नहीं है। ये भी करेक्ट है जी, जो करता नहीं है। भाई लोग ताली किसके लिए बजा रहे हो, करते नहीं हो इसी के लिए या माताओं के लिए ताली बजा रहे, बड़ा कंफ्यूजन है जी, ठीक करेक्ट, ठीक है। अच्छा माताएं बताइए घर की सफाई कितने बार होती है दिन में, दो बार, एक सुबह और एक शाम को, ठीक है। आज अगर आप घर में होते थे तो शायद अभी झाड़ू पोछा सब करके फिर यहाँ आते थे कार्यक्रम, अगर घर में होते थे ऐसे ही कार्यक्रम होता था तो, ठीक है। छुट्टी के दिन घर की सफाई नहीं करेंगे चलेगा क्या? उस दिन तो ज्यादा सफाई होती, उस दिन तो खटिया के नीचे भी थोड़ा सफाई हो जाएगा, जाले भी निकल जाएंगे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा टाइम होता है, स्कूल ऑफिस भाइयों का इतना नहीं होता है, तो यू हैव लिटिल टाइम, ठीक है ना, कर सकते। ओके, प्रश्न नंबर दो, हम अपने शरीर की सफाई मतलब स्नान, हम अपने शरीर की सफाई दिन में कितने बार करते हैं? हाँ, अब तो भाई लोग बोल ही नहीं रहे हैं क्योंकि जो करता है वो बोलता नहीं है, ठीक है। ठीक है, भाई लोग बोल रहे, गिरीश भाई टकलू बोलो तो तकलीफ है, ना बोलो तो तकलीफ है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है जी, कितने बार माताएं? दो बार, एक या दो बार, गर्मी का मौसम होगा तो दो तीन बार हो जाएगा, ऑफिस सुबह जाएंगे तब, फिर ऑफिस से आने के बाद एक बार फ्रेश भी हो जाएंगे। छुट्टी के दिन शरीर की सफाई नहीं करेंगे चलेगा क्या? उस दिन तो ज्यादा सफाई करेंगे, उस दिन शैम्पू भी लगाएंगे, कंडीशनर भी लगाएंगे। माता ऐसे घूर के ना देखें, वो बोल रहे भाई तुम लगाओगे कहाँ, है कहाँ पर तो जो लगाओगे, ठीक है, तुम इतने आनंदित नजर आ रहे हो जी, शैम्पू लगाएंगे कंडीशनर लगाएंगे, ये ठीक है। माताएं, मैं आपके बारे में कह रहा हूं, मेरे बारे में नहीं कह रहा हूं, ठीक है। उस दिन थोड़ा टाइम होता है, सेल्फ केयर सेल्फ हाइजीन, यू कैन टेक टाइम, करना भी चाहिए, ठीक है, नाखून भी काट लेंगे या जो भी, थोड़ा समय रहता है। आज अगर आप उड़ीसा में होते तो अगर शाम का कार्यक्रम होता तो मैं तो अभी स्नान करके ही आया हूं, आप भी स्नान करके आते थे, होता है ना कहीं फ्रेश प्रोग्राम में जाना है तो एक बार स्नान करो। घर की सफाई 365 दिन हर दिन दो बार रिलीजियसली, शरीर की सफाई हर दिन 365 दिन रिलीजियसली दो बार। प्रश्न, हमने अपने मन की सफाई लास्ट कब की थी? घर की सफाई अभी शाम को, शरीर की सफाई अभी शाम को, मन की सफाई, करेक्ट, एक बार मैं ऐसे क्लास करा रहा था, मैंने कहा मन की सफाई लास्ट में कब की थी, तो एक भाई साहब ने कहा कौन से बाथरूम में जाना है, कौन सा साबुन लगाना है, कौन से नल के नीचे खड़े होना और कैसे साफ करना है, ये तो पता ही नहीं है। तो हमारे जीवन में हमारा पूरा जो फोकस है, अटेंशन है, ध्यान है, वो कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर है और शरीर से संबंधित कार्यकलापों पर है। इसको सर्वाइव करने के लिए इसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अभी ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नेसेसिटी नहीं, अभी तो गाड़ी भी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। तो हमारा पूरा जो जीवन का उद्देश्य है, और यही कलयुग की विशेषता है कि the entire focus is on to the body and the bodily relationship। आपको यहाँ की दीदियों ने बताया होगा कि मैं शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं, जिसको हम क्या कहा? आत्मा कहा। मन जैसे ये हाथ, दो हाथ है गिरीश के शरीर के, गिरीश भाई के शरीर के, ऐसे ही आत्मा का एक हाथ है जिसको हम कहते हैं मन। अगर मान लीजिए मैं बातों बातों में कहता हूँ ओम शांति और सिर खुजाता हूँ, फिर कहता हूँ मुस्कुरा के ओम शांति करिए, फिर सिर खुजाता हूँ, फिर कहूँगा कि उमंग उत्साह से कही ओम शांति आप, हाँ जी समझ गया, वो बोले टकलू कितनी बार बोलोगे तुम ओम शांति, एक बार बोलने से ख़त्म नहीं होता। ये कॉम्पिटिशन में है मेरे, ठीक है ना, वो ये कह रहा है कि सिर्फ तुम ही नहीं हंसा सकते हो, हम भी काबिल हैं, ठीक है ना। फिर मैंने कहा आपके दिन में शरीर की सफाई कितने बार करते हो, फिर घर की सफाई कितने बार करते हो, थोड़ा मुस्कुरा के बैठिए, बस यही करता जा रहा हूँ। तो शायद आप इस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि तुम सिर कितने बार खुजा रहे हो और क्या जरूरत है सिर खुजाने की। और फिर कार्यक्रम के बाद आप आकर कहेंगे, भाई साहब क्लास तो बहुत अच्छा कराया आपने, हमको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये बार बार सिर क्यों खुजाते। मैंने कहा खुजाया, मुझे ही नहीं पता कि मेरी एक आदत है, इस हाथ की एक आदत है, और आई एम नॉट इवन अवेयर, मेरे बोध में ही नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो बिजी हूं आपसे बातें करने में, आपको हंसाने में, आपके रिस्पॉन्सेस को सुनने में, आपके बॉडी लैंग्वेज को समझने में, आपको और इजी करके सुना, लेकिन मैंने 500 बार सिर खुजा दिया। ऐसे ही क्या मेरा मन रूपी हाथ आत्मा का, उसकी भी कुछ कुछ आदतें हैं और वो आदतें आत्मा की शक्ति को बढ़ाता नहीं है, उल्टा घटाता है। तो राजयोग मेडिटेशन, ये जिस विश्वविद्यालय में आप बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको ये सब मौका मिला कि आप इसके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में, जहां भगवान स्वयं आके पढ़ाते थे, और क्या पढ़ाया कि बच्चे मन के मालिक बनो, स्वराज्य के मालिक बनो। और हमने, जैसे आप लोगों ने भी रिस्पॉन्स किया, हमको पता ही नहीं है कि हमारे 24 घंटे के जीवन में कुछ ऐसे भी कार्यकलाप, कुछ ऐसे भी हमारा, हाँ किसका मोबाइल बज रहा देखिए, अच्छा सॉरी, हाँ तो हमारा भी ऐसे कुछ एक्शंस होने चाहिए जो हमारे आंतरिक पर्सनालिटी को और शक्तिशाली बनाने के लिए। आपने यहां देखा भी होगा, आप लोग सुबह उठ के मेडिटेशन भी करते होंगे 4 बजे, अब घर जाके भी आपको ये कार्य कंटिन्यू करना है, हमारे सेवा केंद्रों में जाकर मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन बैठ के पूरा ज्ञान स्पष्ट कर दिया, और वो ज्ञान की स्पष्टता परमात्मा हमको बैठ के कराता है। जब आपको पता चल जाएगा, जैसे दीदी कह रहे थे ना, ईगो नहीं करना है, डरना नहीं है, अब ये डर को खत्म करने के लिए भी चीजों को समझना पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि मेरा मन डरता क्यों है, उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो कारण है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और आप पाएंगे जब आप इसका कंटिन्यूस अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन से बहुत सारी बातों का जो डर है, चिंता है, वो सब खत्म हो जाएगा। तब मन में खुशी, शांति, आनंद स्वाभाविक रहेगा। और अगर वो सब है, मतलब आत्म उन्नति, आत्म सशक्तिकरण, मैं आत्मा पावरफुल बनता जा रहा हूं। और सिंपल भाषा में, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, यूथ हैं, नवयुवक हैं, उनके लिए उनका आत्म विश्वास बढ़ेगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है जी सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? वो मुझे पहले मैंने बता दिया है। आत्मविश्वास का मतलब क्या है? कि मेरी पूरी डिपेंडेंसी ऑफ माय विश्वास आत्मा पर केंद्रित है। और अगर बच्चे को आत्मा पर विश्वास नहीं है तो उसके मन में क्या आएगा विचार? मम्मी कहीं फेल हो गया तो, कहीं मैंने प्रश्नों का सही जवाब नहीं दिया तो, इंटरव्यू में फेल हो गया तो। इंटरव्यू देने के पहले, एग्जाम के पहले ही हालत खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन के विचार ही डाउटफुल है, फियरफुल है। तो फिर पसीना छूटने लगेगा, मेरे बातों में कॉन्फिडेंस झलकेगा नहीं, बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं दिखेगा, और हो सकता है इंटरव्यूअर उनको रिजेक्ट कर दे। और फिर बच्चा शायद बोलेगा, देखा मम्मी, मेरे को लग रहा था पहले से मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन जिसको आत्मविश्वास है, अब आत्मविश्वासी वाले व्यक्ति का मन के विचार कैसे होंगे? मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उत्तर दूंगा, जो उत्तर मुझे नहीं आएगा मैं बोलूंगा नहीं आता है सर, बट आई कैन फाइंड इट आउट। क्योंकि डर नहीं है। अगर मैं आपको एक और शब्द कहूं अंग्रेजी का, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान। पता है हमारी विशेष बहनें, कोई भाई भी हो सकते हैं, हम लोग कैसे विचलित होते, मुझे कोई सम्मान नहीं करता, सब अपना अपना सुनता। तो टकलू, कोई नहीं कर रहा है तो छोड़ो, तुम तो कर ले, मैं तो अपने आप को सम्मान कर लूं, आप नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, गलत है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, आप तो कर लो अपना स्वसम्मान, आपको किसने रोका है। लेकिन कैसे करूंगा मैं अपना सम्मान, मैं अपने आप से बोलूंगा, आप कहेंगे गिरीश जी आप बहुत अच्छे हैं, सम्मान है मेरा, आपका क्लास सुन के बड़ा अच्छा लगा, सम्मान है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे को और प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे कहेंगे ना। अब मान लीजिए गिरीश को सम्मान देना है, तो मैं अपने आप को बोलूंगा तुम अच्छे हो, प्यारे हो, भगवान की बहुत सुंदर रचना हो, लेकिन ऐसा करते नहीं है, मेरे को कोई भी नहीं करता। अब बताइए जी, राजयोग मेडिटेशन, मन का मालिक बनकर मन में कौन से विचार क्रिएट करना है, और मेरा मेरे साथ का जो सेल्फ कॉन्वर्सेशन है, अपने साथ मेरी बातें क्या चल रही है, मुझे याद आता है मैं बचपन का आपको किस्सा सुनाता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, शायद क्लास 1 या क्लास 2 में पढ़ता था, तो बहुत मस्ती करता था, बहुत शांति से बैठ के पढ़ाई नहीं करता था, ठीक है ना, थोड़ा सा चंचल बच्चा था। जब मैं कहता हूं तो लोग कहते अभी भी कोई कम नहीं हूं, ठीक है ना, तुम्हारी चंचलता ठीक है। तो हमारी जो क्लास टीचर मैडम होती थी ना, जो बच्चों को पढ़ाती थी, वो मुझसे 2 कदम आगे थी, और पूरे बच्चों को कंट्रोल नहीं करती थी, जो सबसे खुरापाती बच्चा होता था, जो सबसे मस्तीखोर होता था, उसको खत्म टैकल कर लेती थी, एक अटेंशन में आ गया माना बाकी सब अटेंशन में आ जाते थे। तो मैडम क्लास में आते ही साथ कहती थी गिरीश, और मेरा उनके साथ रिलेशनशिप ही ऐसा हो गया था, बिना कुछ गलती के ही मैं बोलता था मैडम मैडम मैंने कुछ नहीं किया। अरे जब कुछ किया ही नहीं है तो बोलने की क्या जरूरत, हो गया था जी हमारा संबंध। फिर मैडम ने कहा गिरीश, तो मैंने कहा सॉरी मैडम, अरे बिना गलती के सॉरी भी बोल देता था, क्योंकि मैडम मुझे ही पकड़ती थी, कोई और भी गलती करता था ना, एक को कंट्रोल कर लो बाकी सारे के 60 के 60 बच्चे कंट्रोल में आ जाते। तो एक दिन मैडम आई क्लास करा रही थी, अचानक ऑफिस का कोई स्टाफ आया और मैडम को कहा, कुछ बातें की, तो मैडम ने हम बच्चों को कहा बच्चों मेंटेन साइलेंस, शांति बना के रखो, मेरे को प्रिंसिपल मैडम के साथ है ना कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा करके काम करके तुरंत आती हूँ, आजू बाजू क्लास चल रहा है आवाज नहीं करना, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने खड़े होकर के कहा मैडम को, मैडम आप प्लीज जाइए, नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, हम बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे। और मैडम को पता था यही सबसे गड़बड़ वाला है, तो मैडम ने कहा गिरीश इधर आओ। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस बोल रहा था जाओ, मैं तो कंफर्म कर रहा था कि मैं कुछ मस्ती नहीं करूंगा। मैडम ने कहा इधर आओ। मैंने कहा सॉरी मैडम। मैडम ने कहा आते हो या नहीं। मैंने कहा बेटा तुम पिटने वाले हो। मैं डर डर के मैडम के पास आया। मैडम मुझसे ज्यादा स्मार्ट थी। पता है मैडम ने क्या कहा, मैडम ने सारे बच्चों को देखकर कहा गिरीश को मैं अभी मैं जाऊंगी और जब तक वापस आऊंगी तब तक गिरीश विल माइंड द क्लास, मुझे मॉनिटर बना दिया। और जैसे ही मैडम ने ये कहा मैंने मैडम को देखा, मुझे समझ में ही नहीं आई। पता है मैडम ने क्या किया, उल्टा चोर को कोतवाल बना दिया। तो चोर ही यहां पे मॉनिटर कर रहे थे, किसी को चोरी करने ना थे। और मैडम ने मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र दिया, आप जानते हो ब्रह्मास्त्र, खाली नहीं जाता, टारगेट अचीव करता है, ठीक है ना। मेरे हाथ में एक चौक पीस दिया, चौक होता है ना ब्लैक बोर्ड में लिखने का, और कहा गिरीश बेटे कोई भी बच्चा मस्ती करे ना उनका नाम लिख देना, 1 2 3 4 लिखा, और जिसका भी नाम लिखोगे ना उसकी तो खैर नहीं। ओहो, मेरे हाथ में जब चौक पीस आया तो मुझे ऐसे लगा मैं संसार का सबसे पावरफुल व्यक्ति हूँ, ही मैन एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। मैडम गई और मैंने अपना काम शुरू कर दिया जी, मैंने आंखों में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, हॉरोस्कोप, सब स्कोप लगा दिया जी, और मैं घूर घूर के देखने लगा। और मैंने देखा राहुल किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा राहुल मेंटेन साइलेंस, मैंने तुम्हारा आर लिख दिया है, अब नहीं तो फिर देखना टीचर तुमको परेशान करेगी। तो राहुल ने कहा नहीं 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 गिरीश, सॉरी सॉरी। दोस्तों, जीवन में परम आनंद का सुख की अनुभूति क्या होती है, पहली बार अनुभव की, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। फिर मैंने अपना टेलीस्कोप गर्ल्स की तरफ, मैंने कहा स्मिता हेड डाउन डोंट रेज योर हेड, नहीं तो मैंने तुम्हारा नाम लिख देना, एस तो लिख दिया। नहीं 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 गिरीश, मेरा नाम नहीं लिखो। ओहो हो भाई और बहनों, जिंदगी भर सारे टीचर्स, माता पिता, समाज, रिलीजन, किताबें, इंटरनेट, मोबाइल, बुक्स, सब ने एक ही चीज सिखाया, माइंड द क्लास। दूसरे क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको वैसे करना चाहिए, मेरा पूरा मन का ध्यान इधर है। जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी संस्था में आया मुंबई में, जब मैं 22 वर्ष का था, और वहां के सेंटर में, आपको भी जाना है सेंटर में, सीखना है मन का, मास्टरी करना है, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन साइंस, एमएस करते हैं ना बच्चे, मास्टर्स इन फिजिक्स, ऐसे ही मास्टर ऑफ द माइंड। तो पता है वहां की एक माताजी ने मेरा कोर्स कराया, उन्होंने मुझे कहा आप यहां आए हैं, अभी मेडिटेशन करेंगे, फिर क्लास करेंगे, 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। मैंने कहा हाँ, और फिर पता है मुझे क्या कहा, 2 मिनट के लिए मुझे कहा प्लीज माइंड योर ओन माइंड, अपने मन को देखो कि हे मन तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, परिस्थितियां क्या कर रही है, वो ठीक है, लेकिन उसको हैंडल करने के पहले स्वयं को हैंडल करना, स्वयं के मन को, इसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। मन के मालिक बनो, फर्स्ट स्टेप, जानो कि मैं कौन हूं, और फिर उस परमात्मा सुप्रीम हाउस के साथ कनेक्ट करो। करें एक एक्सरसाइज, मन को जानने का प्रयास करें, करें मन का एक्सरसाइज। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, इजी लग रही है? और भाइयों और बहनों, हाँ, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे उनके मोबाइल से, प्लीज डिस्टर्ब नहीं होइए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से रिलैक्स। टेंशन लेंगे ना तो और ही बंद नहीं होता है, ठीक है ना? और ये हमारे सब बुजुर्ग पार्टी है, इनको दो ही बटन आता है, एक लाल वाला और एक हरा वाला। साइलेंस वायलेंस हमको पता नहीं, भैया तू करना, बज रहा है, करो करो, यही पे टेंशन हो जा रहा है, वो अभी भी लगे हैं, ठीक है। अरे कोई है यूथ, इनको मदद करो। वैसे तो भाइयों का ऐसा नहीं होता है, बहनों का होता है, माताओं का बजता है ना, 1 मिनट तक बचता रहता है, क्योंकि वो खोजती रहती है कौन से पर्स के सैक जिप में डाला, ये वाला, वो वाला, तीसरा, चौथा, क्योंकि इतने सारे खाने होते। चल, मन में भी साइलेंस बटन है, मनुष्य ने मोबाइल बनाया, उसमें साइलेंस बटन भी है, वाइब्रेटरी बटन भी है, मोड है, फ्लाइट मोड भी है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी है, कितने सारे। 2 मिनट के लिए अपने मन को कहो चलो साइलेंट मोड, सुनता है क्या, बजना शुरू, पॉपअप आते रहते हैं। पहले एक्सरसाइज करें, चलो मन का एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, हम पांच सेकंड का एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद उसका चिंतन करेंगे और समझेंगे कि साइकोलॉजी क्या कहता है। और मैंने देखा है स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी जो भगवान यहाँ हमको सिखाते हैं ना, वो हमारे साइकोलॉजी के साथ मैच करता है। गारंटीड है आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, आपको कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर मन को थोड़ा सा प्यार से सही दिशा दे दी। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम पता है कहाँ से शुरुआत होती है? वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आमतौर के लिए हम कहते हैं व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ लैकिंग, लैकिंग मतलब भरपूरता नहीं हूँ, संपूर्ण नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हुई है, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहाँ पैदा हुए थे? हाँ, हो गया जी कल्याण। लेकिन अगर आपने उसको धारण कर लिया, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, इतने देर में तो कभी नहीं हंसे थे आप, इस सुंदर नहीं हूं मैं क्यों इतना हंस रहे थे आप? ठीक है ना, मेरे वाइफ ऐसी है, वो ऐसा करती हैं, बच्चा ठीक नहीं है, पढ़ता नहीं है, गलत आदतों में, कहीं ना कहीं कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, कमी कमी कमी। आपको किस्सा सुनाऊं? कल मैं ट्रेन से आ रहा था तो एक माताजी ने हमें फ़ोन किया, बोला मेरा बेटा ऐसा है फलाना है, खूब बातें बताई। मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने बेटे से बात किया, एक डेढ़ घंटे बात किया। तो मैंने कहा ठीक है अब मैं आपके माता पिता के साथ भी बात करता हूँ। तो मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी फिर चालू। मैंने कहा आपको समस्या क्या है बेटा? बेटा बड़ा है, आर्किटेक्ट है, तो ये। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा अपने बेटे की पाँच विशेषताएँ बताओ। एक सोच सोच के बता रही है, दूसरा सोच सोच के बता, तीसरा। मैंने कहा वो तो बता दिया आपने। बोला हाँ वो इसमें भी अच्छा है, लेकिन कंप्लेंट। हमारा ना मन, मतलब अगर उनको ढील दे दो ना, तो वो आधा घंटे तक अपने बच्चे के गलतियां 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 विशेषताओं को सोचने। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं माँ को प्यार नहीं है बच्चे से, माँ को चिंता नहीं है, हम ज्यादा फोकस्ड है नेगेटिविटी पे, खुद का, समाज का, ईरान युद्ध का, देश का, पॉलिटिकल पार्टीज का, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। उदाहरण दूं, पहली बार जब मैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, पहली बार गिरीश भाई भारतीय सेना की सेवा करने के लिए कश्मीर गए, ये शायद 2010 या 11 की बात होगी। और उस समय जो हमारे अब पिछले जो CDS थे, जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट CDS, उनके जो पिताजी थे लेफ्टिनेंट जनरल, वो ब्रह्मा कुमारीज में आते थे, उनको बड़ा ब्रह्मा कुमारीज का मेडिटेशन अच्छा लगता था। तो बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं परिचय तो हो ही जाता था, तो उनको भी थोड़ा पॉजिटिव इंक्लिनेशन था ब्रह्मा कुमारीज के बारे में। तो उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि आप कश्मीर में आओ, और उस समय तो हालत कश्मीर की इतनी अच्छी भी नहीं थी। तो हम पहली बार गए कश्मीर में, वो लाल चौक के नज़दीक उनका यूनिट था, एक यूनिट था जिसका नाम था किलो फोर्स, आज भी वो यूनिट है, वो आतंकवादियों पर भारी पड़ते, किलो किलो मतलब भार। अच्छा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनके यूनिट में पति पत्नी का आपस में कुछ झगड़ा हो गया, होता है भाई, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बातें होती, बहुत सारी बातें। तो पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पति ने ऐसी कुछ बात कर दी, पत्नी को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उसको सहन नहीं हुआ। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इम्पल्सिविटी, तुरंत रिएक्शन। अरे संसार में मैक्सिमम चीजों का नियंत्रण है, अगर यहाँ AC चल रहा है तो ठंडी लग रही है, कभी हम फ्लाइट में जाते बहुत ठंडी लगती है ना, तो हम वो एयर होस्टेस को बोलते हैं अरे बहुत ठंडी लग रही है, कांप रहे हैं भाई, थोड़ा बढ़ाओ टेम्परेचर।
आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो पंखा का रेगुलेटर बढ़ाओ या उसको कम कर, गाड़ी चला रहे हैं जल्दी जाना है तो एक्सेलरेटर को दबाओ, हाँ सामने कुछ गाड़ी आ गई है गाड़ी को रोकना है तो तुरंत ब्रेक लगा दो, कंट्रोल है।
प्रश्न पूछूं,
मन का कंट्रोल।
और भाइयों और बहनों आपसे एक निवेदन है, मैं आपके पांव छूने के लिए भी तैयार हूं, आप बड़े बुजुर्ग हैं और बहुत सीरियसली कह रहा हूं, आपके घरों में जितने युवक हैं युवतियां हैं बच्चे हैं छोटे आपके बच्चों के बच्चे हैं, प्लीज उनको सिखाइए। उनकी कंडीशन है ना हमारी कंडीशन से बड़ी खराब है, वो तो पैदा ही हो रहा है इसको लेकर के। और ये जो है ना सिगरेट और शराब से ज्यादा डेंजरस है, पता है क्यों? कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है ना तो पता है क्या होता है, सिगरेट का धुआं निकोटीन लंग्स में जाएगा, ब्लड में मिक्स होगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप है शरीर में, सबसे ज्यादा खून की आवश्यकता ब्रेन को है, ठीक है, ब्रेन को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई चाहिए। लेकिन अब कौन सा ब्लड जा रहा है? निकोटीन वाला, सिगरेट में निकोटीन होता है, वो जैसे ही यहां जाएगा यहां हमारा एक केमिकल ब्रेन होता है, पूरे पूरे हॉर्मोन्स हैं यहां। आपने कभी सिनेमा का डायलॉग सुना होगा ना, इसके ब्रेन में लोचा हो गया है। सो देयर आर टू ब्रेन्स, वन इज इलेक्ट्रिकल ब्रेन द अदर इज केमिकल ब्रेन। आप दवाई की दुकान है यहां पे और बहुत सेंसिटिव है, तो ये जो निकोटीन वाला ब्लड है ये केमिकल ब्रेन में जाता है और वहां बहुत सारा केमिकल्स है, निकोटीन वाला ब्लड जा करके मिक्स होता है, रिएक्ट करता है और पता है एक हार्मोन को रिलीज करेगा और वो रिलीज करता है, सिगरेट पिया ना अभी 2 घंटे तक और भी काम कर सकता हूं, अभी जो मूड खराब लग रहा था सिगरेट पीने से अच्छा लग रहा है, जिस बात का टेंशन था उससे दूर हो गया हूं, जिसको हम नशा कहते हैं उसको ऐसा लगता है कि बस अब मैं कर सकता हूं, वो अलग बात है 2 घंटे के बाद वापस सिगरेट पीना पड़ेगा क्योंकि नशा उतर जाता है। रिसर्च किया गया जब हम मोबाइल, अच्छा कौन सा रिलीज होता है हार्मोन, उसको हम कहते हैं प्लेजर हार्मोन, जिसको हम कहते हैं डोपामीन। आप मोबाइल देखिए डोपामीन सीक्रेशन, सिगरेट पीजिए डोपामीन सीक्रेशन, सिगरेट का भी लत लगती है, आदत लगती है, मोबाइल की भी आदत लगती है, एडिक्टिव है ये, डोपामीन इज रिलीज इज प्लेजर विच इज एडिक्टिव। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है भारत के माता पिता दादा दादी नाना नानी अपने बच्चे को 2 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे को सिगरेट नहीं देंगे, लेकिन इफेक्ट तो सेम ही है। और ये आपने देखा होगा, ये बच्चे का आप मोबाइल छीन लो, थैंक यू मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, ऐसे बोलेगा। जो व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है उसे जबरदस्ती सिगरेट छीजिए, गाली देगा आपको। मोबाइल छीनिए, बच्चा क्या करता है, कितना रिएक्ट करता है। तो हमारा जो सद्बुद्धि है, मैंने देखा है मम्मी छोटे से बच्चों, क्योंकि मम्मी को टाइम नहीं है जी, वो रो रहा है सीधे मोबाइल पकड़ा दो, वो है छोटू, वो शांत तभी रहेगा जब मोबाइल मिलेगा। मैं कैसे कार्यक्रम में जा रहा था, मुझे बीच से जाना था, स्टेज था और साइड में जगह नहीं थे, तो ऐसी माताएं बैठी थी, तो एक छोटू बैठा हुआ था दोनों पांव चढ़ा के, तो मैं जा रहा था मैंने देख लिया, मैंने बीच में हाथ कर दिया, तो पता है वो क्या करता, फिर मैंने वो मुझे देख भी दिया, इज नॉट इवन लुकिंग एट मी, ऐसे 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 मोबाइल को। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब ये बड़ा होगा ना। आपको एक और उदाहरण देता हूं, 10 तारीख को, पिछले 10 को मैं IIM रोहतक में था, उन्होंने मुझे NIA का एक सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए निमंत्रण दिया था। आप जानते हैं NIA क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो सब इन्वेस्टिगेट करते हैं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, आतंकवादी अभी बहुत सारे लोगों को पकड़ा था लखनऊ और इधर, तो उनके 40 पुलिस कमिश्नर्स थे, सब IPS ऑफिसर्स, तो उनका कुछ मैनेजमेंट MDP प्रोग्राम रखा था, उसमें मुझे निमंत्रण दिया था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करने के लिए। वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, तो वो मुझे बता रहे थे, मैंने कम से कम उनसे 1-1.5 घंटे बात किया। उन्होंने कहा हमारी इंस्टीट्यूट पूरे विश्व में 150वां इंस्टीट्यूट है रैंकिंग में, जैसे हार्वर्ड नंबर 1 है, MIT नंबर 2, ऐसे हम 150th। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ बच्चे लाखों में कुछ लोगों को सिलेक्शन मिलता, बहुत टफ है एंट्रेंस एग्जाम। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक प्रथा है कि हर बैच में एक बार हर सेमेस्टर में जो टॉप 10 बच्चे होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10, उसके साथ हम डिनर करते हैं। आप अच्छा पढ़ रहे हो, आपका भविष्य ऐसा होना चाहिए, इस पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि वो डायरेक्टर है, वो तो पूरा देश विदेश घूमते हैं। तो ये जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि ये थोड़ा ब्रह्मा कुमारी इसके संबंध संपर्क में, इन्होंने एक नई क्रिएटिव आइडिया निकाली। पता है वो 10 के साथ तो मिलते हैं, नीचे के 20 से भी मिलते हैं, ऊपर के 10 तो हैं ही अच्छे हैं, बॉटम 20 के साथ भी वो मिलते हैं। और उनके साथ रात को वो डिनर किया और वो मुझे अनुभव सुना रहे थे कि ये जो 20 बच्चों से हम मिले, तो बच्चों ने कहा हम आपके साथ पर्सनली मिलना चाहते, 1-to-1 मिलना चाहते, सबके साथ नहीं मिलना चाहते, उनकी कुछ होगी समस्या, प्राइवेट बात करना चाहते। तो डायरेक्टर साहब ने कहा ठीक है। और डायरेक्टर साहब कह रहे थे मैं रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे तक एक एक से मिल रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो 20 नीचे के 20 बच्चे, ये सभी के सभी 90% ये 20 बच्चों में इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या तो पति पत्नी में डाइवोर्स हुआ है बचपन में, या पति पत्नी झगड़ा करते थे। भाइयों और बहनों, ये बचपन में जो इम्प्रेशन होता है ना मन में, उसको इतना जल्दी आपको हटाना बहुत मुश्किल होता है। राजयोग मेडिटेशन, यहाँ का ज्ञान, मैं तो आजकल रिकमेंड करता हूँ, पति पत्नी को आपको झगड़ा करना है, बाहर जाइए, रेस्टोरेंट में बुक कराइए डाइनिंग टेबल, मस्त झगड़ा करिए, लेकिन घर में बच्चे के सामने माताएं बोल रही टकलू तू करके दिखा, कितना डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं कर सकते है जब झगड़ा होता है घर पे। हमने बच्चे पैदा किए, बच्चों ने बच्चे पैदा किए, पोतरे धोतरे हैं, लेकिन उनको पालना देने की कला, घर का वातावरण, क्योंकि मन में गुस्सा आया, इंपल्सिविटी की मैं बात कर रहा था, तुरंत पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी को ब्रेक लगा सकते हैं। वहां पे कश्मीर में वो यूनिट में, किलो फोर्स के यूनिट में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति ने कुछ कह दिया, नहीं बोलना चाहिए था बट बोल दिया, क्या करें, पत्नी को इतना गुस्सा, इंपल्सिविटी, तुरंत मन जड़ाम बॉइलिंग टेम्परेचर पे। और पता है पत्नी ने क्या किया, बाथरूम में गई, टॉयलेट क्लीनर खोला, साफ करते हैं ना, पी लिया, अरे पूरा फूड पाइप जल गया उसका, चिल्लाने लगी, हाथ में एसिड गिरे तो कितना जलन होता है अंदर वाला, चिल्लाने लगी, पति ने भागा, उसको पकड़ करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बच गई, बहुत डैमेजेस भी हुआ। कुछ दिनों के बाद जब थोड़ा मामला ठंडा हो गया, पत्नी को पूछा गया तुमने टॉयलेट क्लीनर क्यों पिया, पता है पत्नी क्या कहती, अब दिस इज इंटरेस्टिंग, पत्नी ने कहा मरना नहीं चाहती थी, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, दोनों में कोई मैचिंग नहीं है, ये कौन सा मनुष्य बुद्धि है। आपको बच्चों का बात बताऊं, 8वीं कक्षा का बच्चा, गिरीश भाई ने सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिव सुसाइड, वहां मैंने कोर्स किया है, ये बहुत रजिस्टर्ड केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे कोई हवा में कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं ये टकलू हूं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं। 8वीं कक्षा का बच्चा दिल्ली में, स्कूल से आते हैं बच्चे मोबाइल देखते हैं आजकल, तो 1-2 घंटा मोबाइल ही मोबाइल मोबाइल, मम्मी ने कहा बहुत हो गया बेटा, बस अब तो बंद करो, अब तो पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो ना, करने के बाद तुम देख लेना, बच्चे कहां सुनते हैं जी आजकल,
मम्मी ने थोड़ा स्ट्रिक्टली आंख दिखा के कहा इनफ, बहुत हो गया, अब मोबाइल छीन लिया और कहा भी जाओ पढ़ो। इम्पल्सिविटी एक, नंबर टू ये सारा खेल मन में हो रहा है, और इसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मन का मालिक बनिए। ये इतनी प्यारी प्यारी दीदियां, इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया इसको ठीक करने के लिए, फ्री में आपको एक रुपया नहीं देना है। जाइए हर दिन, आपका ही घर है, भगवान आपका है, आपको अधिकार है जी सुख शांति आनंद की दुनिया को अनुभव करने के लिए। बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, व्हाइट नहीं भी पहनिए चलेगा, कलर ड्रेस ही पहनिए, इसको तो ठीक करिए, बच्चों को तो सिखाइए कम से कम। नंबर टू, उसको हम कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। आज के जमाने के बच्चे ना सुन नहीं सकते, ना मतलब उनको गुस्सा आ रहा है। हमारे जमाने में जो बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, ना मींस ना मींस ना। एक बार मम्मी ने बोल दिया नहीं, तो फिर आप उसके आगे बोल नहीं सकते थे। आज के जनरेशन को हम अल्फा जनरेशन कहते हैं। अल्फा जनरेशन वाले बच्चों का पता है बिहेवियर कैसा है? वो आपको क्वेश्चन करेंगे और ना तो सुन ही नहीं सकते हैं। मैंने सोचा है मतलब मिलना चाहिए, वो फिर कोई भी तरीका अपना सकते हैं। वो रोएंगे धोएंगे और हम दुखी होकर के उनको दे भी देंगे। अच्छा तू रोना बंद कर ले बेटा, उनको पता है रोने से मम्मी मान जाती है, क्योंकि मम्मी के रोने से पप्पा भी मानते हैं। अच्छा रोना बंद करो जी, तुमको जो चाहिए ले लो, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली ना ले। तो पता है बच्चे ने क्या किया, मम्मी ने कैसे मोबाइल छीना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। मैंने बोला मतलब मुझे चाहिए, और मम्मी ने मुझे कैसे डांटा, और बच्चे की इम्पल्सिविटी। पता है बच्चे ने क्या किया, दरवाजे से बाहर गया, बालकनी से नीचे कूद गया। आठवीं कक्षा का बच्चा डाइंग ऑफ सुसाइड एंड द रीजन इज मोबाइल। और मैं हंसी की बात सुनाता हूं, जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, तब जाकर पता चला हमारे जमाने में कि सुसाइड भी करके एक ऑप्शन है। बस मारी खाते रहते थे मम्मी पापा से, हमको मालूम ही नहीं था कि सुसाइड भी कर सकते, और मम्मी पापा को कंट्रोल मिला था। आपको समझ में आ रहा है? प्लीज अपने बच्चों को मानसिक तौर पर, उनको आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, IITian बनाइए, मैं मदद करूंगा आपको। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के माता पिता काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनको ये कोर्स करना है, उनको वो कोर्स करना है, हम मदद करेंगे। इंजीनियर डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लीज बनाइए, साथ में अच्छा मन भी बनाइए। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके सुसाइड करे चलेगा क्या? वो आर्किटेक्ट पढ़ने वाला बच्चा सिगरेट पीता है, गांजा लेता है, और मम्मी दुखी हो रही है, क्या आर्किटेक्ट बन के आपने कर लिया? इतना भी विवेक नहीं है कि क्या गलत क्या सही, हम इसके अधीन हो रहे हैं कि मेरे को बहुत दुख है मैं कैसे करूं। सिगरेट पियो, शराब पियो, ड्रग्स लो, और हम माता पिता का क्या हाल होगा अगर हमारे बच्चों का ये हाल है? तो हमको स्वयं को अपने चिंता से मुक्त होना है, डर मुक्त होइए। आपको मैं एक मेडिटेशन का एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक उदाहरण देता हूं, प्लीज आपसे निवेदन है खुद भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, और अपने घर संबंधी अड़ोसी पड़ोसी गांव में जितने लोग हैं सबको सिखाइए, बहुत जरूरी। आने वाला समय है ना, बहुत हलचल में आने वाला है, इतनी अनिश्चितता है, इतना इनस्टेबिलिटी है, इतनी अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल लेवल पर है, सामाजिक लेवल पर है, रिलीजियस लेवल पर है, घर में पारिवारिक संबंधों को है, धन को लेके, भविष्य को, हर चीज बड़ा अनसर्टेन है। एक ही चीज स्थिर रह सकता है। मुझे लगता था जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आने के पहले पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट कर लिया था, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आई थॉट आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माय लाइफ, बहुत अच्छा जीवन था मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बॉम्बे में बहुत अच्छी तरह हम जीवन जी रहे हैं जी, जैसे एक यूथ का होना चाहिए। अब उसको क्या आध्यात्मिकता, क्या वाइट ड्रेस। आई हू थॉट आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माय लाइफ, ब्रह्मा कुमारीज में आने पे पता चला मनुष्य का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों पर ही नियंत्रण हो सकता है, चौथा चीज ही नहीं है, ओनली थ्री थिंग्स। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारा ये तीन चीजों पर ही नियंत्रण नहीं है, बाकी सब चीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। पहला मन, मेरा मेरे मन पर संपूर्ण नियंत्रण हो सकता है क्योंकि मेरा है जी। दूसरा जिसको हम कहते हैं द एटीट्यूड, दृष्टिकोण। और नंबर तीन इन दोनों से बनने वाले कर्म, एक्शंस, बोल। मरना नहीं चाहती हूं लेकिन क्या करना चाहते हो, क्या सोच रहे हो क्या रहा है, तीनों में कोई समानता नहीं है। मेरा किसी दूसरी व्यक्ति या परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं हो सकता, एक ही चीज पर हो सकता है। और जहां आप इस पर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे धीरे धीरे वो नियंत्रण आता जाएगा, इमोशनल कंट्रोल आता जाएगा, इमोशनल इंडिपेंडेंस ही आना शुरू हो जाएगा। फिर देखिए लाइफ कितना मजेदार है, समस्याएं लेकिन आप सदा रमणीक, सदा हर्षितमुख, सदा उमंग उत्साह, सदा खुश है। बाहर है प्रॉब्लम, मैं तो ठीक हूं, मैं ठीक हूं, शांत हूं, स्टेबल हूं, तब जाके समस्या का समाधान आसानी से। खुद हलचल में हूं तो समस्या में और शायद गड़बड़ कर सकता हूं। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बातें? चलो एक्सरसाइज करें, एक दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए, नोटबुक पेन बाजू रख दीजिए किया सबने? बहुत अच्छा। ये दोनों हाथ की उंगलियों को ओठों के किनारे रखिए, बहुत अच्छा। ऊपर की ओर धक्का लगाइए, पूरा दांत दिखना चाहिए, मुस्कुराइए, बहुत अच्छा। चेहरा ऐसे ही रखते हुए हाथ नीचे करें, चेहरा वैसे ही रखें। अब आजू बाजू वाले को देखिए देखिए एक दूसरे को, और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो दोनों हाथ की उंगली का योगदान दीजिए, अब इनकी मुस्कुराहट भी हमारे हाथों में। ओ माता जी को आंखों से आंसू आ रहा है हंस हंस के। ठीक, सब मुस्कुरा रहे हैं पक्का? एक छोटा सा निवेदन है, कल शाम के 6:30 बजे तक उड़ीसा जाने के बाद घर जाना देखना बच्चा टीवी देख रहा है, आईपीएल मैच देख रहा है, उसको कहना बेटा जब से मैं घर से गई हूं तूने किताब को हाथ नहीं लगाया है, प्लीज टीवी बंद करके पढ़ ले। जब आप इतने प्यार से कहेंगे ना तो आपका बेटा आपको ऐसे देखेगा, गुस्सा नहीं कर रही है, परेशान नहीं हो रही। मेरा किस चीज पर नियंत्रण होना चाहिए, उसको ठीक करने के चक्कर में। दो बार प्यार से कहना, जब आप मुस्कुरा के कहोगे बेटा प्लीज टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, तो होगा बच्चा शायद ऐसे बोल भी दे आपको, मम्मी लगता है आपको कोविड हो गया है, सिम्टम ही इतना खतरनाक नजर आ रहा है, अरे भड़क नहीं रही है। उनको कहना कोविड हो ना हो प्लीज टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। बोलेगा मम्मी आपके लिए आईसीयू बेड विथ ऑक्सीजन सिलेंडर बुक कर देता हूँ, आपका सिम्टम इतना खतरनाक नजर आ रहा है, आपको एडमिशन की आवश्यकता। एक बार प्यार से, दो बार, तीन बार, 10 बार बोलिए। बच्चे सुनते हैं क्या? प्यार से बोलने से बच्चे सुनते हैं क्या? सुनते हैं, अच्छे बच्चे हैं जी आपके, हमें तो लगता है कि नहीं सुनते हैं, ठीक है ना जब वो नहीं सुने तो प्लीज माताएं ऐसे नहीं करना। अब माता जी की शांति हिल रहा है, अंधकार छा रहा है, जो यहाँ पे इतने सारा ज्ञान की सब अस्त हो रहा है, गुस्सा चढ़ रहा है, ठीक है। फिर हमारी माता दुर्गा और काली और असुर संहारिणी शांति की टिकली ड्रेसिंग टेबल पे चिपका दिया, स्नेह की माँ, जो जो यहाँ इतना आत्मा का गुण बताता सब बाहर। अब माता जी बच्चे को गुस्सा करके कहते, समझ में नहीं आता क्या, कितना देर से तेरे को बोल रही, सुनता क्यों नहीं है? तो बच्चा मम्मी को, ओम शांति में जाके आई हूं,
बिना ओम शांति में जाके तो मैं ज्यादा शांत रहता हूँ जी, ये ओम शांति में जाकर। तो हमारी शांति सिर्फ आधा घंटे की नहीं होनी चाहिए, अगले 24 घंटा कुछ भी हो जाए, हो सकता है पक्का। भाई लोग आप गाड़ी चलाएंगे उड़ीसा में, पता नहीं किसी ने पीछे से आपके गाड़ी को टक्कर मार दिया, गाड़ी से नीचे उतरना, पीछे वाले ड्राइवर को कहना भाई साहब तीन चीजें कहना, पहला भाई साहब चोट तो नहीं लगी, वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप धरतीवासी ही नहीं हो, आपको गाड़ी को मैंने टक्कर और आप मेरा इंक्वायरी कर रहे हो। दूसरा वो बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, उनको कहना भाई साहब क्या टक्कर मारी है आपने, आहा मेरा एक ही चीज पर नियंत्रण होना चाहिए, किस पर, स्वयं पर, तो अर्जुन विजयी महाभारत युद्ध में। और तीसरा पीछे वाले ड्राइवर को कहना अब ये बोलने में नहीं, थैंक यू तो हो गया अब आपको शांति की अनुभूति होगी। दोस्तों आजकल देखा गया है कि राइट होकर मैं राइट और ज्यादा गुस्सा आ रहा है
राइट होकर की ब्यूटी,
अरे राइट वाला व्यक्ति को तो और शांत रहना क्योंकि तुम राइट हो, जो गलत है वो उत्तेजित होना चाहिए, वो परेशान होना चाहिए, वो दुखी होना चाहिए। आज कलयुग में देखा गया राइट वाला व्यक्ति और परेशान है और दुखी, हाँ या ना, ये हेल्दी माइंडसेट नहीं है। हमारा ना ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, क्योंकि राइट हूं गाली दे सकता हूं, तुम चुप रहो मैं राइट हूं। कौन सा भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, कौन सा दुनिया का संविधान आपको, आप गीता उठा के देख लीजिए, जो कंट्रोल में है उसका मान शांत है। गौतम बुद्धा पढ़िए आप, बुद्धा के एक शिष्य को उसने कहा मुझे भिक्षाम दे, पानी डाल दिया, जो था उसमें भी पानी डाल दिया, उसका शिष्य उसको कहता है कल्याण भव कमाल जी, जो आपने किया वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास चॉइस है, मेरे पास एबिलिटी है, वो शक्ति राजयोग मेडिटेशन से और सत्य ज्ञान से आएगा। तो तीसरा महावाक्य बड़े अधिकार से अब आपको शांति की अनुभूति होगी, पीछे वाले ड्राइवर को मुस्कुराते हुए कहना भैया तुझे नहीं छोड़ूंगा, यही है ना अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने गड़बड़ किया पूरा पैसा, यही बोलिए। भाइयों और बहनों शांति का मतलब चुप रहना, दबना, कुछ नहीं करना नहीं है, शांति का मतलब मन की अवस्था को कंट्रोल में रखकर बहुत कुछ करना है। हम खुशी को ढूंढते हैं, गुस्सा करते हैं, कोई आपके गाड़ी को टक्कर मार दे और आप ऐसे कहना बोला क्या हुआ, बोला गुस्से को ढूंढ रहा हूं, प्यार को ढूंढ रहा हूं, खुशी को ढूंढ रहा हूं, सफलता को ढूंढ रहा हूं, नहीं। मंदिर मस्जिद गिरिजाघर सब जगह धन संपत्ति पोस्ट पोजीशन अवार्ड रिवॉर्ड में ढूंढ रहे हो ना, गुस्सा भी ढूंढ लीजिए, चिंता भी ढूंढ लीजिए। हमारी माताएं आपस में एक दूसरे का कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो एक माता जी रो, अच्छा तो दूसरी माता कहती रोना बंद, कैसे रोना बंद करो, आ रहा है ना भाई साहब ने कहा था ना गुस्सा आ रहा है ना, कमाल है जी, फिर खुशी क्यों नहीं आ रहा, कोई आपको गाली दे दे टकलू बकवास कर रहा है तू क्यों हंस रहा है, आ रहा है जी खुशी, आपको समझ में आ रहा है, हर अच्छी चीज आ नहीं रहा है, हर बुरी चीज इंस्टेंटेन आदत हो गई है, इसको ब्रेक करिए। पीछे वाले ड्राइवर ने आपके गाड़ी का नुकसान पहुंचाया, आपको संपूर्ण अधिकार है वो नुकसान की भरपाई प्राप्त करने का, लेकिन उस वक्त हम ऐसा करते नहीं है, उस वक्त हम गुस्से में आ जाते हैं, हमारा बीपी चढ़ा रहे हैं, हमारा एड्रेनल सीक्रेट कर रहे हैं, हमारा कॉर्टिसोल सीक्रेट कर रहे हैं, और उसके कारण मेरे को डायबिटीज हो सकता है, मेरे को बीपी हो सकता है, मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है। उसने मेरा 1,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया, मैंने अपना फुल नुकसान, कौन ज्यादा बुद्धिमानी है, कौन ज्यादा अज्ञानी है, उसने गलती की है लेकिन खुद तो गलती ना करो। ऐसे हाथ से नहीं मुस्कुराना है, स्टेबल रहना है, शांत रहना, ये नियंत्रण, ये आपको आत्मज्ञान हर दिन ईश्वर परमात्मा हमको बहुत कार्य करने को कहता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं। हमारी दीदियाँ, हम भी ऐसे ही समझते थे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे 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 करते करते हमारा लाइफ, हमारा फिजिकल हेल्थ सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मुस्कुराएंगे पक्का, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति में देखना मन शांत और इजी। फिर अगर आप ऐसे घर में रहेंगे तो आपके बच्चे बोलेंगे मम्मी अगली बार भी जाना ओम शांति में। ठीक है, हर दिन जाता ओम शांति में, आपके शांत रहने से फायदा किसको? घर वालों को। घर वाले आपसे प्यार करें, आप पे कॉन्फिडेंस रखें, तो फिर घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? समझ में बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, जोर से ताली बजाइए। तो जैसे दीदी ने कहा, ये सब चीजों को बस यहीं छोड़ के नहीं जाना, वापस आप अपने अपने शहरों में जाना, वहां ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र होगा। आप अपने आप को टाइम दीजिए, एक साल यहाँ जाके थोड़ा पढ़ाई करूँगा, थोड़े इनकी बातों को सुनूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा, थोड़ा राजयोग में, फिर देखूँगा फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, मेरा जीवन अच्छा बन रहा है, तो कंटिन्यू कर लेंगे। कर सकते हैं ना ये? तो ठीक है, चलो थैंक यू। एक मिनट मेडिटेशन करें, क्या करेंगे? अच्छा दो मिनट ले लेता हूँ। मनुष्य सबसे ज़्यादा बातें किससे करता है? अपने आप से करता है। उसमें इमेजिनरी बातें ज़्यादा करता है या यथार्थ बातें ज़्यादा करता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी में भी पॉजिटिव इमेजिनेशन ज़्यादा या नेगेटिव इमेजिनेशन ज़्यादा? नेगेटिव। कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए, एग्जाम में फेल नहीं हो जाए, अरे भाई कुछ हुआ ही नहीं है, आप नेगेटिव इमेजिनेशन क्यों कर रहे हो? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो ब्रेन है ना, छः चीज़ों के लिए, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में इसका एक्सपेरिमेंट किया, छः चीज़ों के लिए हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और यथार्थता में फर्क नहीं ढूंढ पाता, दोनों को सेम मानेगा। भले आप इमेजिन ही कर रहे हो, कल्पना ही कर रहे हो, लेकिन ब्रेन को लगेगा कि ये करेक्ट है, और वैसा ही आपका शरीर और वैसे ही आपका ब्रेन केमिस्ट्री काम करेगा। उदाहरण दूं, कल रात को नींद में, रात की नींद में, ट्रेन में थोड़ा नींद ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन फिर भी मान लीजिए नींद में गिरीश भाई को एक स्वप्न आया। स्वप्न इमेजिनेशन होता है या रियल? ठीक है, मैंने देखा स्वप्न में, इमेजिनरी में, कि एक कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है, तो बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? भागेगा। कहाँ पे भागेगा? स्वप्न में भागेगा, करेक्ट। ओरिजिनली में मैं क्या कर रहा हूँ? जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं हैं, हम कर्राठा लगा करके बाजू वाले को दुखी भी करते हैं, ठीक है ना, हम वहाँ पे भी शांति नहीं है जी, वहाँ पे वो भी चालू रहता है, ठीक है। अब मैं नींद कर रहा हूँ, लेकिन स्वप्न में क्या कर रहा हूँ? कितना भाग सकता हूँ? एक दो सेकंड। और वो कुत्ते ने मेरी टांग पकड़ ली, मुझे काटा, मुझे दर्द हुआ, मुझे घबराहट हुआ, मेरे पसीने छूट गए और मेरी आँख खुल गई, और मैंने कहा भगवान जी बचाओ, भगवान, वाहिगुरु, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, गणपति, जिसको भी आप मानते। जैसे ही आँख खोल के देखा तो अंधेरा अंधेरा, मैंने कहा ये क्या है? फिर मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया, पाँव को देखा, बोला अरे बच गए। ओहो, ये मैं क्या देख रहा था? प्रश्न पूछूं, उस वक्त संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस, बीपी, हार्ट बीट, पल्स रेट चेक करेगा तो नॉर्मल होगा या हाई होगा? अब बताइए जी, कुत्ता था नहीं, आप भाग नहीं रहे थे, आपका पसीना किसने छुड़वा दिया? हाँ नहीं, वो तो इमेजिनेशन था। शरीर में पसीना किसने छुड़ाया? बीपी किसने चढ़ाया? हार्ट बीट किसने बढ़ाया? ब्रेन ने। मन तो स्वप्न देख रहा था, ब्रेन को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ब्रेन को भाइयों और बहनों नहीं समझ में आता, छह चीजों की बातों के लिए नहीं समझ में आता। आपसे नम्र निवेदन है, हम सोच सोच के अपने शरीर को दुखी कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, इमेजिनेशन है। अब आपको राजयोग मेडिटेशन बताता हूं। डीओजी को उल्टा करिए, फैंटास्टिक, ये भी इमेजिन, मान लीजिए, वैसे तो भगवान सत्य है, मान लीजिए मेडिटेशन आप करते हैं और भगवान मेरे बाजू में बैठा है, मान लीजिए, और वो मेरे को गले लगा के कह रहा है, मीठे बच्चे चिंता नहीं करो, मैं हूं। इमेजिनेशन मान लीजिए, मेरे शरीर के केमिस्ट्री वहां तो चढ़ गया था बीपी, अगर वहां पर सब हो सकता है, बिना डॉग के, बिना काटे, बिना भागे, डर की अनुभूति हो सकती है, दर्द की अनुभूति हो सकती है। प्रश्न पूछूं, भगवान के प्यार की अनुभूति, सेल्फ कॉन्फिडेंस की अनुभूति, शांति, हलचल है जीवन में। ईरान का युद्ध चल रहा, वहां भी हलचल है, घर में किसी बात का हलचल है, लेकिन ये इमेजिनेशन, मैं ट्रेन में हूं, गाड़ी चल रहा है लेकिन कुत्ता काट रहा है, डर गया ना। ऐसे ही सुख, शांति, आनंद, कॉन्फिडेंस, शक्ति की अनुभूति नहीं कर सकते हैं? तो करते क्यों नहीं है? बस राजयोग मेडिटेशन, वो भी वैसा ही है। मान लीजिए मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, मान लीजिए भगवान भी निराकार, और वो मुझे जैसे एक छोटा बच्चा पापा की गोदी में बैठ जाता है, निश्चिंत हो जाता है, वैसे मैं भी निश्चिंत को अनुभव करना है। मेडिटेशन का लक्ष्य है आत्मा के सात गुण को अनुभव करना। हम खा के, पी के, कमा के, घुमा के, खरीद करके खुश को अनुभव करने का प्रयास कर रहे, टेम्पररी है, ये परमानेंट है। मेडिटेशन भी वैसा ही, आपके ब्रेन को नहीं समझ में आता, हम डर, कल एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, कल एग्जाम में फेल, अरे एग्जाम ही नहीं लिखा, कहां से फेल हो जाओगे, और उसके कारण मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा है, मेरे को लूज मोशन हो रहा है, मेरा बीपी चढ़ रहा है, सोच सोच के। वैसे ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, दीदी आपको ट्रेन कराएंगी, हमेशा अच्छा बच्चों को सिखाइए, गणित आसान है, मेरे को अच्छे मार्क्स, पढ़ाई भी करनी है, लेकिन सोचो भी तो अच्छा, अनुभव भी तो करो अच्छा, मेडिटेशन में कर लीजिए, और फिर देखिए आप हेल्थ, आपके शरीर की बीमारियां ठीक होंगी, जैसा सोचेंगे। हो सकता है यहां से अभी आप चल के जाएंगे, अगर आपको कोई विचार आ गया घर का, पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा अच्छा है, पढ़ाई करेगा, समझदार है, उसका भविष्य अच्छा, अच्छा तो सोचो, चाहते हो ये, लेकिन सोच क्या रहो, पढ़ नहीं रहा होगा, समझ नहीं रहा होगा, पता नहीं मस्ती कर रहा होगा क्या, जैसा जैसा सोचेंगे, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं, मेरा घर परिवार सुख शांति से भरपूर है, माता पिता बुजुर्ग उनका हेल्थ अच्छा है, बच्चों का भविष्य अच्छा है, बिजनेस ठीक है, हमारा घर निर्विघ्न है, अच्छा अच्छा, जैसा सोचेंगे वैसा ब्रेन करेगा, वैसे ब्रेन में वैसे वैसे डिसीशंस आएंगे, हमारा पीएफसी काम करेगा, आपके वैसे ही निर्णय आएंगे। कुत्ता था नहीं लेकिन पसीने किसने छुड़वा दिया जी, बीपी किसने चढ़ा दिया जी, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मेडिटेशन माना अपने आप से अच्छा, अपनों के लिए अच्छा, परमात्मा के साथ अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव, भले नेगेटिव हो भी रहा होने दो उसको, उस पर चिंता नहीं करो, टर्न करिए। ठीक है, चलो एक मिनट मेडिटेशन करते हैं। आप लोग को समझ में आया, मेडिटेशन के बेनिफिट मैंने बताया आपको, इट विल डायरेक्टली बेनिफिट यू। बस एक मिनट मेडिटेशन करते हैं। हल्के होकर के बैठे, बहुत आराम की स्थिति में, मन में कोई हलचल नहीं, एकदम रिलैक्स। अपने मन को कहें, हे मन, अगले एक मिनट के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना है, अपॉइंटमेंट है, फ्यूचर, घर, नौकरी, धंधा, जिम्मेवारी, सब बातों से मुक्त। कितना सुंदर संगीत है, पूरा ध्यान म्यूजिक पे लगाइए। अपने आप को पूछिए, कैसा महसूस कर रहा हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं, कितना हमने एंजॉय किया, कितना हंसे हम, खुशी को लाइए, सब टेंशन भुला दीजिए, देखने का प्रयास करें ब्रकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, शाइनिंग स्टार, सुपर स्टार, मैं स्टार हूं, भगवान ने मुझे स्टार का रोल दिया है, हीरो का रोल, मैं आत्मा शुद्ध हूं, शक्तिशाली हूं, सुख स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। फील करें दोस्तों, स्वीकार कर लें। हाँ, कमी कमजोरी है, उसे हम ठीक करेंगे, लेकिन अभी अच्छा हूं। कर्म में, बोल में, दृष्टि में कुछ भी चेंज नहीं करना है। घर वालों को संभालना है, पैसे कमाने हैं, बच्चों को पालना देना है, वो सब करना है, लेकिन प्यार से, खुशी से, आनंद से, शक्तिशाली होके, टेंशन से नहीं, चिंता से नहीं, बस ये चेंज करना है मुझे। हमको सन्यासी नहीं बनना है, जंगल में नहीं जाना है, घर में रहना है। दिन में सिर्फ एक घंटा सुबह या शाम ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर मेडिटेशन, राजयोग, ध्यान और ज्ञान को प्राप्त करना है। बाकी 23 घंटा वो सब करना है जो आज तक करते आए हैं, लेकिन प्यार, खुशी, शांति से। कितना आसान है ये, और ये संभव है। मेरे घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा है, बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूं, सब मुझसे बहुत अच्छे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार है। भगवान को दिल से धन्यवाद दें, बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद दें, ब्रह्मा कुमारी इसको धन्यवाद दें, यहां के हर सेवाधारी को धन्यवाद दें, स्वयं को धन्यवाद दें, प्रकृति को धन्यवाद दें, सबके लिए कृतज्ञता, सबके लिए थैंक्स, सबके लिए ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद देते मन को एकदम शांत, कितना अच्छा लग रहा है। इसी शांति की स्थिति में रहते हुए धीरे से आंखें खोलें, अगर आपने आंखें बंद की हो, बहुत प्यार से कहें ओम शांति, दोनों हाथ को रब करें, माथे के ऊपर, आंखों पे, गाल पे, वेरी गुड। फेयर एंड लवली लगा लिया, ऐसे ही लगाते हैं ना, सदा फेयर और सदा लवली। थैंक यू, आपका आने वाला भविष्य, परिवार सहित आप बहुत स्वस्थ रहें, बहुत खुश रहें, बहुत समृद्ध रहें। थैंक यू।